नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान ने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही।
अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्ट्रेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान के लघु और मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप्स के जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने जापानी कंपनियों को आमंत्रित किया कि वे भारत में निवेश करें और विश्व के लिए विनिर्माण में सहयोग करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम आधारित बनाने के प्रति वचनबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि इस दौरान 8 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
Both governments have decided to advance cooperation across 8 pillars, and these pillars are economic relations, economic security, mobility, ecological sustainability, technology and innovation, health, people-to-people exchanges, and partnerships between Indian states and Japanese prefectures.
गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री गुलाब बरबोरा के वर्ष भर चलने वाले जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गुलाब बरबोरा एक दूरदर्शी समाजवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और असम के महान मुख्यमंत्री थे। गृहमंत्री ने कहा कि देश में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने सैन्य प्रशिक्षण से चिकित्सा कारणों से बाहर हुए अधिकारी कैडेटों को ECHS सुविधा प्रदान की। इसके लिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS का विस्तार किया गया है। इससे उन अधिकारी कैडेटों को लाभ पहुंचेगा जिन्हें चिकित्सा कारणों से अथवा सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चोटिल होने से सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये सुविधा प्रशिक्षण पूरा होने से पहले चिकित्सा आधार पर निष्कासित कैडेटों पर लागू होगी। भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में GDP 7.4% रही थी। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 6.5% रही थी। आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा ने आकाशवाणी को बताया कि कई क्षेत्रों में विकास के कारण GDP में बढ़ोतरी का अनुमान है।
इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा, सेवा क्षेत्र का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कंजम्पशन है वो भी काफी अच्छा रहा है, लगभग आप समझ लीजिए 7% और 10% के करीब में है। अमेरिका का जो सीमा शुल्क का मसला है उसका क्या असर पड़ेगा, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये विवाद लंबा नहीं चलेगा। अगर लंबा नहीं चलता है तो इस साल जो विकास दर 6.3 से 6.8% के बीच जो आर्थिक सर्वेक्षण में रखा गया था उसी रेंज में विकास होने का अनुमान है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज बोरे के उपयोग शुल्क में लगभग 40% की वृद्धि की घोषणा की। इस कदम से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। इससे सुचारू खाद्य प्रक्रिया सुनिश्चित होगी, टिकाऊ पैकेजिंग प्रथाओं को समर्थन मिलेगा और खाद्यान्न खरीद और वितरण में केंद्र राज्य सहयोग मजबूत होगा। देशभर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ये दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।